महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेत्य, ओम नमः सिद्धेत्य, ओम नमः सिद्धेत्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक द्वारा रचित यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है। षटखंडागम का यह छठा खंड है जो आचार्य की रचना है। इसमें कोई टीका उपलब्ध नहीं है। यह हम ये जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है प्रकृति बंध की बात है, प्रथम प्रकृति बंध अधिकार, उसमें अभी हमारा प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का प्रकरण शुरू है। पहले में पहले मंगलाचरण के रूप में हमने नमो जिनानम के बाद ये 44 सूत्र देखे थे। कल हमने ज्ञानावरण की बात, यानी पहले में पहले मूल 8 कर्मों के नाम देखे। उसके बाद ज्ञानावरण में आभिनिबोधि ज्ञानावरण की बात देखी। शुद्ध ज्ञानावरण की प्ररूपणा चल रही थी, जिसके जितने ज्ञान के भेद है उतने ही उसके आवरण के भेद है। मति ज्ञानावरण हमने टोटल 336 भेद कल देखे थे, यानी 4 मूल भेद है। आवरण के भी वही है, जो ज्ञान का नाम है उसी के आगे आवरण शब्द जोड़कर उसके आवरण के भी उतने भेद बताए थे। तो पहले 4 भेद अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, उसको 5 इंद्रिय और मन के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाते हैं। उसमें चक्षु और मन को छोड़कर अर्थावग्रह के पहले व्यंजनावग्रह होता है, उसको 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाते हैं। और उसमें ये जो 12 विषय ना, एक एक विद, बहु बहु विद वगैरह, तो उसके द्वारा हम गुणा करेंगे तो उसके 336 भेद हो जाते हैं। उसकी चर्चा हमने कल देखी। अब श्रुत ज्ञान में जो है, श्रुत ज्ञान तो ज्ञान का भेद है, परंतु द्रव्य श्रुत जिसको कहेंगे अक्षरात्मक, उसको भी श्रुत ज्ञान श्रुत कह देते हैं। और यहाँ जो श्रुत ज्ञान के जो भेद बताए हैं, शब्द ज या शब्द जन्य और लिंग जन्य, लिंग यानी चिन्हों के द्वारा होता है, उसके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक रूप 2 भेद बताए थे। और श्रुत ज्ञान का कारण है जिनेन्द्र भगवान की वाणी, प्रवचन। इसलिए प्रवचन को कहो या 12 अंग या जो 14 पूर्व की जो रचना हुई है अंग बाह्य की भी, उसको भी श्रुत कहने में आता है। श्रुत ज्ञान के भेद में उसकी भी चर्चा आती है। अब ये जो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वो पर्याय और पर्याय समास नाम से उसमें असंख्यात लोक प्रमाण भेद पाए जाते हैं। और जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसके अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं तो उसके संख्यात भेद है। पहले में पहले वो कैसे निकालना, टोटल अक्षर कितने हैं, तो वहाँ 33 तो व्यंजन होते हैं, 27 स्वर है और 4 योगवाह, यहाँ उसको अयोगवाह कहा था। उसमें एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, एक होता है जिह्वा मूलीय और एक होता है उपधमानीय। तो इस तरह से ये 64 टोटल मूल वर्ण है और उसके कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो वो होते हैं 31-1, वो 18, 44 वगैरह हमने बड़ी संख्या देखी थी। अब ये इसमें से 1634,83,7,888 अक्षरों का एक पद होता है जिसको मध्यम पद कहते हैं। और इन पदों में हमारे सारे जिनवानी द्वादशांग की रचना हुई है। तो इतने अक्षरों का एक पद है, तो हमने इस संख्या से वो इकट्ठी माइनस वन को भाग दिया तो टोटल हमें पद कितने मिले, तो 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार और 5 तो पद हुए, और जो शेष बाकी रहे तो वो थे 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175 अक्षर बचे। जो हमने 112 83 लाख वगैरह वगैरह पदों की संख्या देखी थी उसमें ये 12 अंगों की रचना होती है। पहला आचार अंग, दूसरा सूत्र कृतांग वगैरह वगैरह सब इसमें से बने हैं। अभी उसके बाद हम पेज नंबर 23 पर आए थे, पहली पुस्तक पेज नंबर 23। भाग देने से शेष बचे हुए अक्षरों को अंग बाह्य कहते हैं। ये जो 12 अंग है उसको कहेंगे अंग प्रविष्ट, और ये अंग बाह्य, अंग बाह्य के। अभी उसमें 14 प्रकार बताए हैं यहाँ पर, हम कल 24 क्यों कह रहे थे? उसमें 14 ही है, 24 मैंने कल गलती से 24 बताया था, 24 नहीं 14 उसमें अधिकार कहो या उसके अलग अलग जो विषय 14 प्रकार के होते हैं अंग बाह्य, तो उसके नाम यहाँ बताए हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य। वो कल्प लिखा है ना, वो कल्प्य चाहिए, किया था हमने लास्ट टाइम। महाकल्प्य, पुंडरिक, महापुंडरिक तथा निषिद्धिका, ये 14 प्रकार है। इसमें तो मुनियों के ही जो आचार संबंधी उसमें सारा वर्णन आता है, ये सब मुनियों के लिए लागू होते हैं। बुद्धि के अतिशय तथा रिद्धि विशिष्ट गणधर देव के द्वारा अनुस्मृत जो द्वादशांग रूप जिनवाणी की ग्रंथ रचना है वह अंग प्रविष्ट है। यानी गणधर देवों ने इसकी द्वादशांग रूप जिनवाणी की रचना है, यानी जो 12 अंग है उसको कहेंगे अंग प्रविष्ट। आचार्य अकलंक देव उन गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा आरातीय आचार्यों के पास से श्रुत ज्ञान के तत्व को ग्रहण करके काल दोष से अल्प मेधा यानी कम बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, अल्प बल तथा अल्प आयु युक्त प्राणियों के अनुग्रह के लिए उपनिबद्ध यानी उन्होंने जो रचना की है संक्षिप्त रूप से अंगों के अर्थ रूप वचन विन्यास को अंग बाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गणधरों ने जिसकी रचना की है वो तो अंग प्रविष्ट है, और उनके शिष्य और प्रविष्य प्रशिष्य, गणधरों के डायरेक्ट शिष्य और शिष्यों के शिष्य उसको कहेंगे प्रशिष्य, उनके द्वारा आराती आचार्यों के पास, यानी जो परंपरा जो है ना आज परंपरा कहते हैं, उनके पास श्रुत ज्ञान के तत्व को ग्रहण करके, यानी उन्होंने परंपरा से चले आए हुए श्रुत ज्ञान को अच्छी तरह से जाना है। अब क्या कहते, अभी जो पंचम काल है और जो आने वाले काल जो जितने आगे बढ़ेंगे, काल दोष से क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा था, तो अल्प मेधा बुद्धि अल्प हो रही है, बल भी अल्प है, और यानी समझने की बुद्धि भी अल्प है, उसको धारण करना याद रखना वो भी अल्प है, और अल्प आयु वाले क्योंकि अभी कब आयु तो कम होती जा रही है, ऐसे प्राणियों के अनुग्रह के लिए उसके उपकार के लिए उपनिबद्ध जो रचित संक्षिप्त रूप से अंगों के अर्थ रूप, ये अंगों का उनका अभ्यास था मुनियों का, और उन्होंने उसको संक्षेप में उसकी रचना करके अन्य अन्य ग्रंथ लिखे। अर्थरूप वचन विन्यास, वचन विन्यास करो शब्द रचना को एक ही बात है, अंग बाह्य कहते हैं। इस दृष्टि से आचार्य परंपरा से प्राप्त यानी ये मुख्य बात क्या है, आचार्य परंपरा से आई हुई बात है। मूल बात तो जिनेन्द्र भगवान ने बताई है, गणधर ने जिसकी रचना की है और वो आचार्य की परंपरा से आई है, तथा जिनवाणी के तत्व का प्रतिपादन करने वाले अन्य ग्रंथांतर अंग बाह्य श्रुत में समाविष्ट होते हैं। यानी अभी जितने हमारे पास उपलब्ध अन्य भी ग्रंथ है ना, जो टीकाएं हैं अभी है, आचार्य अकलंक देव वगैरह वगैरह बात बताए हैं, अभी कुंदकुंदाचार्य ने जो रचना की है, अमृतचंद्राचार्य ने की है, षटखंडागम जो हुआ है, वो सब किस में आया है, आ जाएगा अंग बाह्य में आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल श्रुत से ही उसका ही उन्होंने संक्षिप्त में परिचय दे दिया है। ये अक्षरात्मक की बात हुई। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का सबसे छोटा रूप पर्याय ज्ञान कहता है, कहलाता है। ये मिनिमम ज्ञान जिसको कहेंगे, कम से कम मति और श्रुत ज्ञान जो है, ये श्रुत ज्ञान के भेद है, परंतु मति ज्ञान को भी वही भी उसी नाम से पहचाना जाता है, तो उसको कहते पर्याय ज्ञान। उससे कम ज्ञान किसी भी जीव के नहीं पाया जाता, एक बात। और मिनिमम इतना ज्ञान तो होगा ही होगा, कोई बिना ज्ञान का जीव हो ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। उस ज्ञान के नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण कहा, उस ज्ञान को नित्य प्रकाशमान क्यों कहा, क्योंकि इतना तो अल्प ज्ञान तो इतना मिनिमम तो होगा ही होगा, और ये ज्ञान कैसा है, निरावरण है। निरावरण इसलिए कहा कि जब क्षोभम पाए, एक क्षोभम ज्ञान है। अभी जितने ज्ञान के भेद है उतने आवरण के भी भेद है, तो पर्याय ज्ञान है तो पर्याय ज्ञानावरण नाम का कर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, परंतु उसका उदय कब होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहते हैं, यानी वो पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जावे तो पर्याय ज्ञान का भी पर्याय ज्ञान भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि ये पर्याय ज्ञानावरण जो है, पर्याय ज्ञान के लिए वो पूरा घात करने वाला है। तो वो बांधा तो था, सत्ता में भी पड़ा है, जब उदय रूप होना है तो वो तो अन्य रूप होने, उसके ऊपर वाला जो भेद है आवरण का, उस रूप होकर अक्षर कहाँ का चला गया। पर्याय ज्ञान के लिए क्या कहेंगे, पर्याय समास का पहले भेद वाला, उसका जो नंबर वन का आवरण है, उसका उदय होगा। जिसको अकेले पर्याय ज्ञान इतना ही है, सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त को पर्याय ज्ञान है, तो उसके पर्याय ज्ञानावरण का उदय नहीं है। जो दो नंबर का ज्ञान होगा उसका आवरण वाला उदय है। अब जिसका अधिक उघाड़ है तो कहते वहां तक के आवरणों का उदय नहीं है, उसके ऊपर के आवरणों का उदय है। देखो, उस ज्ञान को नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण कहा है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव अपने योग्य संभवनीय 6012 भवों में परिभ्रमण कर। अभी ये मिनिमम ज्ञान कौन से जीव को होता है उसकी चर्चा चल रही है। हमने देखा है कोई जीव लगातार अपर्याप्त भवों में भ्रमण करता रहे तो टोटल 66,336 भव होते हैं। उसमें लगातार एक इंद्रिय के अगर भव करता है तो 66,132 हो जाते हैं। तो वो एक इंद्रिय कितने प्रकार के, तो 11 प्रकार के, 5 तो सूक्ष्म है और 6 तो बादर एक इंद्रिय है। सूक्ष्म मैंने सूक्ष्म अग्नि का एक, वायु का एक, फिर जल का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक। सूक्ष्म वनस्पति में निगोधी होते हैं, बादर में तो बाकी तो है, पृथ्वी अग्नि जल वायु। वनस्पति में दो प्रकार है, उसमें प्रत्येक की बात नहीं चल रही, हाँ यहाँ बादर की बात है, बादर निगोध और प्रत्येक इस तरह से, हाँ वो प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित के भेद नहीं, मूल भेद 6 है। प्रतिष्ठित में वो आ गए, ये प्रत्येक में वो तीन दोनों आ गए। तो इस तरह से ये 11 होते हैं, 66,032 डिवाइडेड बाय 11, उसकी संख्या आती है अकेले सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त। यानी जो हमने वो 11 अलग अलग टाइप देखे, हर एक के भव मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लगातार की बात है तो 6012। उसके संभवनीय ने पॉसिबिलिटी बताई, अने कोई सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त तक जो है लगातार उसी पर्याय में जन्म मरण करता रहे तो 6012 भव हो जाते हैं। तो उन भवों में परिभ्रमण कर अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ाओं सहित जब ग्रहण करता है, 3 मोड़ वाला लिया, वाई कह के कहाँ की बात है, निगोद में अभी है, निगोद का अंत भाव 3 मोड़ वाला जीव सूक्ष्म होता है, वायु का एक कभी नहीं कहा, सूक्ष्म है वो, निगोद है यहाँ पर। तो 3 मोड़ाओं से जब ग्रहण करता है तब उसके प्रथम मोड़ा के समय में सर्व जघन्य ज्ञान होता है। ये सब उसकी विशेषताएं बताई कि सर्व जघन्य ज्ञान कौन से जीव को हो सकता है। इस पर्याय ज्ञान से आगे यानी उसमें थोड़ा अधिक ज्ञान, थोड़ा अधिक ज्ञान, थोड़ा अधिक ज्ञान, इस तरह से हमने देखे थे, सब मिलकर उसका नाम है पर्याय समास। जब तक अक्षर नाम का ज्ञान नहीं होता है तब तक जो जितने सारे असंख्यात भेद है उसका नाम है अक्षर समास, सॉरी पर्याय समास ज्ञान। उसमें हमने देखे थे अनंत भाग वृद्धि के असंख्यात स्थान हो जाते, फिर एक बार पहले अनंत भाग वृद्धि होती, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर तीसरी बार, जिसको हम असंख्यात बार के लिए कंडक प्रमाण कहेंगे। तो ऐसे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, और जाके एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है, तब एक षटस्थान होता है। ऐसे षटस्थान भी असंख्यात लोग बार होते हैं, तब जब लास्ट में जो अनंत गुण वृद्धि होगी तब जाके अक्षर नाम का ज्ञान वहां होता है। पेज नंबर 23, तो उसके आगे देखो पर्याय ज्ञान से आगे पर्याय समास अक्षर, अक्षर समास। अभी अक्षर तो समझ में, एक अक्षर संबंधी ज्ञान को अक्षर ज्ञान कहा, फिर 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, वो ज्ञान को भी अक्षर ही कहते हैं। ऐसे कि जब तक पद नहीं होगा तब तक वो बीच वाले सारे भेदों को अक्षर समास कहेंगे। तो पद ज्ञान किसको कहेंगे, तो जब कितने अक्षर हो जाते, 1, 2, 4, 5, 10, 15, तो कहते होते होते 1634,83,7,888 अक्षर हो जाते हैं, तब जाके पद नाम का ज्ञान होता है। वो 888 के बदले 887 तक वो सारे अक्षर समास के भेद हो जाएंगे। ये मध्यम पद है जिनवाणी जिसमें रचित है, अभी अपने बात की थी। उसके बाद पद और एक अक्षर, पद और 2 अक्षर, पद और 3 अक्षर, पद और 4 अक्षर, ऐसे पद और पद प्रमाण अक्षर, तो 2 पद हुए, 3 पद हुए, 10 पद हुए, तो ऐसे संख्यात 1000 पद होते होते तब जाके संघात होगा। और संघात में एक अक्षर कम है तब तक सारे भेद है वो पद समास के हो गए। हर ज्ञान में ऐसे लेना, आगे का जब तक नहीं होता है तब जो सारे भेदों का इकट्ठा नाम है समास। तो हमने क्या देखा, पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनियोग अनियोग समास, प्रावृत प्रावृत समास, प्रावृत 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 समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। ये सारे श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ मन का विषय होता है। आप कहेंगे एक इंद्रियों के भी श्रुत ज्ञान है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। उसको कैसे होता है उसकी बात आएगी। श्रुत ज्ञान में मानसिक व्यापार होता है। ऐसी स्थिति में जिनके मन नहीं है उन असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के श्रुत ज्ञान का अभाव समझा जाना चाहिए था, परंतु किंतु परमागम में कम से कम छद्मस्थों के मति तथा श्रुत ये 2 ज्ञान नियमतः कहे गए, एकेंद्रिय हो या कोई भी जीव हो उसके मिनिमम 2 ज्ञान तो होंगे। अकेला मति ज्ञान हो और श्रुत न हो ऐसा कभी नहीं होगा, यानी एकेंद्रियों में भी श्रुत ज्ञान तो होता ही होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होने से, यानी श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम ही उसका कारण है, मन नहीं होने पर भी, मन न होते हुए भी श्रुत ज्ञान का सद्भाव आगम में वर्णित है। इसका कारण यह है कि असंगी जीवों में, असंगी जीव यानी एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, जो कुछ ऐसी क्रियाएं पाई जाती है जिनसे उनके मन के सद्भाव की कल्पना होने लगती है। समझ में ना, मन की कल्पना क्यों होती है? क्योंकि किसी को कोई संकट या कोई बाह्य में ऐसी कोई बात होती है तो वो तो अपना रास्ता चेंज कर चले जाते हैं। हमें अरे इसको समझता लगता है कि उनको अपना विषय जो कुछ है, जैसे मक्खी वहाँ वो जहाँ मीठा है वहाँ पर आके बैठती है, तो उनको मन होता है ऐसा लगता है, वो सब ढूंढ निकालते हैं ना। तो कहते किंतु श्लोक वार्तिककार यानी श्लोक वार्तिक लिखने वाले विद्यानंदी स्वामी के शब्दों में मति सामान्य के समान स्मृति सामान्य धारणा सामान्य तथा उसके निमित्त रूप अवाय सामान्य इहा सामान्य अवग्रह सामान्य पाए जाते हैं, जो कि अनादि भवाभ्यास के कारण उत्पन्न होते हैं। सामान्य से जो कुछ उसमें जो धारणा तक की बातें हैं, अनादि भवाभ्यास, अनादि यानी कोई ओरिजिन ही नहीं, कोई कितना भी पीछे जाओ अनंत 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 काल तो कहते, और उसने सभी भवों में परिभ्रमण किया हुआ है, तो अनादि भवाभ्यास के कारण उत्पन्न होते हैं। उनके क्षोभसम निमित्त भावमन नहीं है, कारण वह प्रतिनियत संगी प्राणियों के होता है, यानी वो निश्चित रूप से संगियों को ही मन संबंधी उसके उसको ज्ञान होता है, यानी मन भावमन होता है। इसका भाव यह है कि पिपीलिका आदि में, पिपीलिका समझते हैं, चीटी को कहते हैं ना पिपीलिका, योग्य आहार का ग्रहण अनुसंधान, अनुसंधान समझते, वो एक लाइन में एक कतार में चले जाते हैं, अयोग्य का परिहार आदि बातें पाई जाती है। उसका कारण मन न होकर स्मृति सामान्य धारणा सामान्य इहा सामान्य अवाय सामान्य आदि है। हमें ऐसा लगता है उनको कौन सिखाता होगा, तो ये तो सामान्य रूप से जो कुछ पड़ा है वहां पर। यहाँ श्रुत ज्ञान की प्ररूपणा की गई है, इससे श्रुत ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा कैसे हो जाएगी, इसके समाधान के धारणा सामान्य ज्ञान बताया। धारणा सामान्य कौन सा? उस भव संबंधी जो है, ऐसा धारणा नहीं है जो अभी हमने जो अक्षरात्मक सीखा उसकी बात नहीं है। जो अभी उदाहरण किसका दिया, चीटी का, चीटी को किसने सिखाया, इसको धारणा सामान्य कहा, स्मृति सामान्य कहा, और उसमें क्या बताया था अभी, अनादि भवाभ्यास, यानी उस भव में उसका उस संबंधी का वैसा, कल हमने उसको कहा जाति विशेष से उसका क्षोभसम विशेष पाया जाता है, उसको यहाँ मन का कार्य नहीं है परंतु वो श्रुत ज्ञान का ही भेद है, और श्रुतावरण को जो है उसके कारण ही वो उसके निमित्त से वो होता है, जिसको हम इन्फरेंस कहते ना, इन्फरेंस के तो मन के द्वारा ही होता है, ऐसा नहीं, वो श्रुत ज्ञानावरण के निमित्त से होता है, इतना ही कहना है उसको। तो कहते कि यहाँ श्रुत ज्ञान की प्ररूपना की है, इससे श्रुत ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपना कैसे हो जाएगी, इसके समाधान में वीर सेनाचार्य लिखते हैं। देखो दो नंबर लिखा है ना यहाँ पर, दो नंबर, ये धवला टीका में से सब यहाँ उद्धृत किया है, तो हिंदी में कहते हम, यह दोष नहीं है, आवरण किए जाने वाले ज्ञान के स्वरूप की प्ररूपना का ज्ञानावरण के स्वरूप परिज्ञान के साथ, यानी ज्ञान का स्वरूप की प्ररूपणा करने से ज्ञानावरण का भी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, क्यों, उसका उसके साथ अविनाभाव है, यानी जैसा जो ज्ञान का भेद है वैसा वो ज्ञानावरण का भी भेद पाया ही जाता है। इस अविनाभाव के कारण श्रुत ज्ञान के स्वरूप निरूपण द्वारा श्रुत ज्ञानावरण का परिज्ञान कराया गया है, इस प्रकार श्रुत ज्ञानावरण की प्ररूपना हुई। ये सब जो है उन्होंने पूर्व धौला टीकाओं में से वीरसेन आचार्य की जो टीका है उसको यहाँ विद्रुत किया है। ये यहाँ तो महाबंध में तो कोई टीका है ही नहीं है, और ये जो हम भेद रहे अभी देख रहे हैं ये तो नष्ट हुआ अंश है उस, क्योंकि शुरुआत के मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण ये तो नष्ट हुआ, अवधि ज्ञानावरण के कुछ लाइन छूट गए और बाद में उनके आगे की रचना इसमें है, इसलिए उन्होंने पूर्व धवला के आधार से, क्योंकि वो भी षटखंड का ही टीका है, उन्होंने यहाँ पर ये रचना की है। अभी हम पढ़ते हैं अवधि ज्ञानावरण के बाद 24 नंबर का पृष्ठ है। जो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है वह एक प्रकार का है, कर्म की बात है, उसकी दो प्रकार की प्ररूपना है। अब अवधि ज्ञान में भेद बता रहे हैं, एक भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान सीमा ज्ञान भी कहा जाता है, क्यों? अवधि का अर्थ ही होता है सीमा, मर्यादा। कैसी मर्यादा है? तो कहते कारण यह द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थ को विषय करता है। रूपी पदार्थ है पुद्गल, और उसमें द्रव्य की मर्यादा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है और भाव की मर्यादा है। द्रव्य की मर्यादा में नहीं कितने सूक्ष्म स्कंध तक जानता है, तक शब्द बहुत महत्व का है, क्योंकि जहां उसकी सूक्ष्म में सूक्ष्म जिस पॉइंट तक जानता है या जिस स्कंध तक, इस साइज तक जानता है, उसके ऊपर के स्कंधों को तो जानेगा ही जानेगा, वो है द्रव्य की मर्यादा। जैसे हमने सर्वावधि तो पूरे एक परमाणु तक को जानता है, और उसके पहले वाला जो भेद है परमावती का अंतिम, वो कारमाण वर्गणा तक को जानता है, उसके पहले वाला उसको उसी से गुणा करो, वो ध्रुव भाग है जो हमने देशावधि से लेकर उतना उतना भाग देते देते आगे बढ़े थे, तो कहते उसको कहेंगे द्रव्य की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा ने कितने क्षेत्र तक उसका अवधि ज्ञान लगता है, यानी उस क्षेत्र के पुद्गल स्कंधों के भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों को जानेगा तो उसको कहेंगे वो क्षेत्र की मर्यादा। काल की मर्यादा ने कितने पूर्व काल तक की पर्यायों को जानेगा उसको कहेंगे काल की मर्यादा, यानी वो स्कंध कोई वर्तमान में है परंतु उसकी कितने पूर्व काल तक की वो पर्यायों को जानता है वो काल की मर्यादा होती है। और भाव की मर्यादा यानी उसके जो कुछ पर्याय है उस संबंधी उसको, यानी वो त्रिकाल संबंधी नहीं जान सकता, जिसको हम सर्वज्ञ की तरह, अनादि अनंत तो नहीं होता है, उसमें मर्यादा है, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहने में आता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भव निमित्त है। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके होता है? तो देवों के और नारकियों के जो नियम से होता ही होता है उसको भव प्रत्यय कहते हैं। उस भव में नियम से क्षोभशम होता ही है, ये उन जीवों को तो अवधि ज्ञान तो होता ही होता है। जैसे पक्षियों की पर्याय में उत्पन्न होने वाले जीव के गगन गमन यानी आकाश में जो उड़ना है, गगन गमन विषयक क्षोभशम पाया जाता है, यानी वो उस जाति में या उस पर्याय में वो नेचुरल है। पंछी है तो वहाँ आकाश में उड़ने के शोभशम उसके है ही है। ऐसे ही देव और नारकियों में उस भव में अवधि ज्ञान होता ही होता है। इसी प्रकार देव तथा नारकियों की पर्याय में जाने वाले संपूर्ण जीवधारियों को नियम से अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यानी उन दो भावों में जाने वालों को नियम से वो अवधि ज्ञान होता ही होता है, भले वो सातवें नरक का नारकी हो या कहीं का रखे। तीर्थंकर भगवान के भी जन्म से जो अवधि ज्ञान होता है उसे भव प्रत्यय कहा है, यानी देव है नारकी और तीर्थंकर का जीव जन्म से उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। उसको भव प्रत्यय नहीं कहते। देखो भव प्रत्यय में क्या विशेषता होती है, वो तो नियम तो है ही है, परंतु उसके अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम जो है ना पूरे आत्म प्रदेशों में पाया जाता है, और जो देशा अन्य जो है ना अवधि ज्ञान उसमें कुछ वो चिन्ह जहां है वहां उतने ही क्षेत्र में उसका क्षोभशम पाया जाता है। जैसे हम चक्षु इंद्रियों का जो चक्षु का ग्रहण है, जो वर्ण का ग्रहण विशिष्ट आत्म वहां के आत्म प्रदेश उस क्षेत्र के आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है, ऐसे अवधि ज्ञान का भी जो है वहां वो क्षोभशम है वो पर्टिकुलर प्रदेशों में पाया जाता है क्षोभशम, परंतु भव प्रत्यय में सर्वांग में होता है। नहीं पर उनको तो सर्वांग में होता है, उनके कोई चिन्ह का सवाल ही नहीं है, ये छोड़ के होता ही नहीं, ये तो होता ही है सबको, मनुष्यों में है परंतु वो चिन्ह जन्मता अवधि ज्ञान है, फिर भी वो देशावधि है, वो उसको भव प्रत्यय नहीं कहेंगे। जन्मता जो है ना तो उसको हम कहेंगे वो अनुगामी है, वहां भी था, वहां तो भव प्रत्यय था, पर वही देव अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में आया है तो उसको भव प्रत्यय नहीं कहेंगे, गुण प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि वहां तो सर्वांग में उसका अवधि ज्ञान यानी क्षोभशम था और यह विशिष्ट हो जाएगा। सम्यक दर्शनादि निमित्तों के सन्निधान होते हुए शांत तथा क्षीण कर्म वालों के जो अवधि ज्ञान होता है यानी उसके जो सर्वाव देखो अवधि ज्ञानावरण ये देश घाती प्रकृति उनका क्षोभशम होता है ने क्या है उसमें जो स्पर्धक है वो सर्वघाती भी होते और देशघाती भी होते। हमें आपको अवधि ज्ञान नहीं है तो हमारे सर्वघाती का उदय चल रहा है, और जिसको अवधि ज्ञान है ज्ञान का उघाड़ है उसके सर्वघाती पड़े रहते सत्ता में, और जब उदय आना है तो देशघाती टर्न होकर उदय में आते हैं। उसको कहते क्षोभशम निमित्त तक अवधि ज्ञान है, उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। उसमें बोल
करके जिनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है
हाँ जन्म हाँ
तो वहाँ पे भी लिमिट होती है कि नहीं वो
अवधि ज्ञान का अर्थ ही लिमिट। सर्वावधि ज्ञान केवल मुनियों को होता है, तीर्थंकर का जीव जन्म से मुनि है क्या, और उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कह दिया है, और भव प्रत्यय अवधि ना परमावधि होता है ना देश सर्वावधि होता है, वो देशावधि ही होता है नियम से, क्योंकि देव और नार के अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान वाले हैं। मिथ्या दृष्टियों को भी अवधि ज्ञान तो होता ही होता है वहां पर, वो भव निमित्त कहा है ना वहां पर। यह जीव के विशेष प्रयत्न पर अवलंबित रहता है, भव मात्र इसमें कारण नहीं है। गुण या क्षोभशम निमित्तक, गुण निमित्तक है ना क्षोभशम निमित्तक कहा उसको, यानी ऐसे उसका क्षोभशम वहां पर है, इसे क्षोभशम निमित्तक कहते हैं। अब आना है 25 पेज पर, अवधि ज्ञान के देशावधि परमावधि तथा सर्वावधि रूप से तीन भेद भी है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि के जघन्य भेद रूप होता है, आई ना बात। गुण प्रत्यय तीनों भेद रूप होता है, तीनों कौन से, देशावधि भी परमावधि भी सर्वावधि भी। गुण प्रत्यय देशावधि का जघन्य यानी उसमें जो मिनिमम ज्ञान है गुण प्रत्यय में से असंयमी मनुष्य तिर्यंचों के पाया जा सकता है, उनके होता है ऐसा नहीं कहा, हो सकता है, क्योंकि वो गुण प्रत्यय है। भव प्रत्यय तो सब में होगा, गुण प्रत्यय तो विशिष्ट किसी किसी के होगा। इसके आगे के विकल्प विकल्प यानी भेद संयमी मनुष्य के ही पाए जाते हैं, यानी वो देशावधि के ऊपर ऊपर के भेद है। परमावधि तो संयमी के ही होता है और सर्वावधि भी, परमावधि सर्वावधि चरम शरीरी मुनिराज के ही पाया जाता है। चरम शरीरी यानी जिसके परमावधि और सर्वावधि है वो नियम से उस भव में मोक्ष जाने वाले ही है। आप कहेंगे सबको थोड़ा ही होता है, सबको नहीं होता है, उसके होता है इसकी जरूरत नहीं है, पर जिसके होता है वो उसी भव में मोक्ष जाएंगे। आप कहेंगे सभी अवधि ज्ञानी मुनि कहाँ मुख जाते हैं, तो वो देशावधि वाले होंगे। सर्वावधि जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आदि भेदों से रहित है, क्योंकि सर्वावधि कहने से एक ही टॉप मोस्ट जो है उसको सर्वावधि नाम है। बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि के जघन्य भेद रूप होता है। बहुप्रत्यय जो है वो देशावधि ही है नियम से, और उसके जो ऊपर वाले भेद हो गए अधिक पावरफुल, वो मनुष्य दीर्यंचों में हो गए, मनुष्यों में भी पांचवें गुणस्थान वालों को मुनिराजों को ऐसे हो गए, ये कहना चाहते। जघन्य एकदम मिनिमम वाला नहीं, उसमें लिमिटेशन तो है ना, उसमें भी हीनाधिक तो अवधि ज्ञान तो होगा ही होगा उनमें भी, और वो भी हीनाधिक जो है वहाँ के जीवों की जो कौन से स्वर्ग के देव कहाँ तक अवधि लगती है नीचे के, वो उससे सारे नियम है। सम्यक्त्व रहित अवधि ज्ञान को विभंगावधि कहते हैं, यानी है तो अवधि ज्ञान परंतु समय दर्शन नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को विभंग अवधि कहते हैं, या अकेले विभंग ज्ञान भी कहते हैं। अवधि ज्ञानत्व की अपेक्षा दोनों में विशेष अंतर नहीं है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व के सहचार वश उनमें नाम मात्र का भेद है। समझ में आते हैं, अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान होता है परंतु वो तो मिथ्या दृष्टि का, अभी उसमें जो कुछ लिमिटेशन वगैरह वो बता देते हैं। काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान के समय आवली क्षण लव मुहूर्त दिवस पक्ष ऋतु, यानी कितने एक समय आगे पीछे का जानेंगे, एक आवली आगे पीछे का जानेंगे, एक क्षण है लव है मुहूर्त, ये जो भेद है जो व्यवहार काल के, पक्ष 15 दिवस, ऋतु 2 महीने, अयन 6 महीने, संवत्सर ने 1 वर्ष, युग ने 5 वर्ष, पूर्व, देखो यहाँ लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है, ये 70,56,00,000 नहीं है, 70,56,000 करोड़ वर्ष, जैसे 70,00,000 कोटि के बदले लाख लिखो, 56,00,000,000 छोड़ निकाल दो और अभी पढ़ो, तो 70,56,000 ने 1,000 कोटि वर्ष, उसको पूर्व कहते हैं। पर्व 84,00,000 पूर्व प्रमाण, सत्तर लाख छप्पन सहस्र और आगे करोड़ कोटि, देखो यहाँ पूर्वांग नहीं लिखा है, पूर्वांग 84,00,000 वर्षों का होता है, पूर्व 84,00,000 वर्षों का स्क्वायर हो जाए, 84,00,000 वर्ष × 84,00,000 वर्ष, और पर्व 84,00,000 पूर्व होता है। समझ में आती है बात, यानी 84,00,000 का घन प्रमाण होगा वो एक पर्व होता है। पल्योपम सागरोपम आदि विधान जानना, हाँ पूर्व को 84,00,000 पूर्वों का एक पर्व है, यानी 84,00,000 वर्ष √3 घन करेंगे तो डायरेक्ट पर्व का प्रमाण आएगा।
हाँ
पर्व ही बड़ा है, देखो 84,00,000 वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84,00,000 वर्ष का स्क्वायर करेंगे हाँ तो एक पूर्व होता है, और 84,00,000 का घन करेंगे हाँ पूर्वांग पूर्व और पर्व ऐसे तीन देखे हमने, परंतु है वो संख्यात वर्ष। अब महाबंध के त्रुटित पत्र में जो प्रथम पंक्ति है उसमें लिखा है। अभी जो हमने सारा जो अभी मति ज्ञान आवरण वगैरह सब पढ़ा है वो सारा त्रुटित के जगह है। ये हमारे संपादक दिवाकर जी ना, सुमेरु चंद्र दिवाकर, उन्होंने धवला के अन्य अन्य पुस्तकों में से हमारे सहूलियत के लिए वो बातें लिख दी है। तो यहाँ त्रुटित अंश देखो, महाधवला में कहो, महाबंध जो इसका नाम है, जगह जगह ऐसे त्रुटित अंश है। जो आपको याद होगा जब हमने पहली बार महाबंध पढ़ा था, और ऐसा त्रुटित अंश पहले पुस्तक में है, दो तीन जगह, तीसरी में है, छठी में बहुत जगह है, और बहुत बड़ा विस्तार वहां नष्ट हो चुका है। छठे के अंत में जाकर हमको ये भरोसा हुआ था कि इसको हम डिराइव कर सकते हैं, और हमने लास्ट टाइम उसको लिखवाया भी था। तो लास्ट टाइम में जो हमने लिखवाया था वो हर एक ने लिखा था, तो फिर हमने उसकी वो ये जेरोक नहीं, उसकी तो डीटीपी करवाई। डीटीपी करवा के बाद उसके बाद भी फिर दोबारा मैंने जांची उसको। यानी देखो, ये हमने ऐसे जो तैयार किए ना, आपके पास है ना महाबंध के त्रुटित अंश, आपके पास लाए ना आपने, तो हमने इस तरह से उसको ये महाबंध के त्रुटित अंश रूप से पूरी ये पुस्तकाकार रचना की है उसकी। यानी इसके करीबन 207 पृष्ठ हो गए हैं, और इसमें हमने वो सारे त्रुटित अंश इसमें लिखवाए हैं। अब इस बार इसका आधार लेके हम जहां जहां त्रुटित अंश होता है उसकी चर्चा करेंगे। देखो जरा इसको पढ़ लेते, पहले जो इंट्रोडक्शन है ना उसको पढ़ते हैं। पहले पेज तो केवल महाबंध के त्रुटित अंश उसका जो नाम दिया है उसके पीछे के पेज पर देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, यहां से मैं पढ़ रही हूँ, त्रुटित अंश में से पढ़ रही हूँ, इंट्रोडक्शन वाला। षटखंडागम हमारा प्रथम श्रुत स्कंद है। हर साल श्रुत पंचमी के दिन श्री धरसेनाचार्य की दूरदृष्टिता एवं श्री पुष्पदंत और श्री भूतबली आचार्यों की बुद्धि की विचक्षणता को हम जरूर याद करते हैं। इसका नाम क्या है? षटखंडागम। उन्होंने रचना षटखंड की है ना। इन छह खंडों में से प्रथम पांच खंड है जीवोत्थान, खुद्दाबंध। देखो जीवोत्थान ये पहले धवला की छह पुस्तक तक जीवोत्थान चला है, फिर सातवीं पुस्तक में खुद्दाबंध, फिर आठवीं में बंध स्वामित्व विचय, फिर नौवीं से आगे वेदना खंड, और बाद में वर्गना खंड। इन पर श्री वीरसेन स्वामी ने जो विस्तृत टीका लिखी है उसका नाम है धवला। यानी धवला है वो 16 पुस्तकें हैं, वो पांच खंडों पर लिखी हुई टीका है। छठवां खंड है महाबंध, जिसका दूसरा नाम है महाधवला। यह भूत बली आचार्य की मूल रचना है। पहले पांच खंड भी उन्हीं की रचना है पुष्पदंत जी के साथ, परंतु ये तो बस इसकी कोई टीका नहीं, इस पर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। नाम के अनुसार ही यह एक महान रचना है। जहां पांचों खंडों के ऊपर लिखी हुई धवला टीका हिंदी अनुवाद सहित 16 पुस्तकों द्वारा प्रकाशित हुई है, वहां यह मूल छठवां खंड महाबंध 7 पुस्तकों द्वारा प्रकाशित हुआ है, और वो भी बड़े बड़े पुस्तक है ना। धवला की 16 और जयधवला की 16 पुस्तकें, इनका आद्योपांत सविस्तार सामूहिक स्वाध्याय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके पश्चात महाबंध का स्वाध्याय शुरू किया। पहली पुस्तक की शुरुआत ही त्रुटित अंश से हुई। अभी जो हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वगैरह देखा है वो तो धवला के आधार से दिवाकर जी जो है पंडित जी, हाँ सुमेरु चंद दिवाकर जी, उन्होंने वो लिखा हुआ है। जहां त्रुटि अंश आता वहां चालू विषय को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने जगह जगह पहली पुस्तक में तो उन्होंने उसको कर्मकांड के आधार से अन्य ग्रंथों के आधार से लिखने की बहुत कोशिश की है, परंतु आगे के भागों में तो त्रुटित अंश लिखकर छोड़ दिया है। क्योंकि जहां एक एक अधिकार में 24-24 अनुयोग द्वार होते हैं, वहां तो 20-20 अनुयोग द्वार नष्ट हो चुके हैं। तो कहते कि अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता, अनेकों बार ऐसा होता गया। तीसरी पुस्तक और छठवीं पुस्तक में भी अनेक बार त्रुटित अंश आए, कहीं कहीं तो अनेक अनुयोग द्वार नष्ट हो गए हैं। करणान योग के इन सिद्धांत ग्रंथों की एक परिपाटी होती है, एक शैली होती है। किसी भी विषय को विवक्षित क्रम से समझाया जाता है। उसमें भी 24-24 संयोग द्वार होते हैं। उसमें ओव से अर्थात सामान्य से कथन और आदे से यानी मार्गणों की अपेक्षा से कथन आता है। उसमें प्रथम सभी अधिकार मूल प्रकृतियों पर समझाए गए हैं और बाद में वे ही अधिकार उत्तर प्रकृतियों पर समझाए गए हैं। जब हम छठवीं पुस्तक के एक त्रुटित अंश तक पहुंचे तब मुझे विकल्प आया और ऐसा विश्वास हुआ, इस त्रुटित अंश पर विचार करके और सामूहिक रूप से चर्चा करके इसे लिखे। हमारे सभी स्वाध्याय भी तत्परता से इसमें सहभागी हुए। एक एक वाक्य पर शंका समाधान चलता। मैं कहीं मूल प्रकृतियों के आधार से, कहीं पूर्व प्रकृतियों पुस्तकों के आधार से इसका समाधान करके एक एक वाक्य बोलती थी, मैं भी लिखती थी और अन्य सभी स्वाध्याय भी लिखते थे। आपको तो याद है ना, आप सबने तो लिखाया है। हाँ। जैसे जैसे आगे पढ़ते गए वैसे वैसे उस विषय संबंधी पूर्व में छूटे हुए त्रुटित अंश ढूंढ निकालते गए। यह एक सुंदर अनुभव था, बुद्धि को चुनौती थी और सहाध्यायियों के प्रश्नों के समाधान के लिए महाबंध के पूर्व पठित पुस्तकों का बारंबार अवलोकन होता था। हमारे अश्विन में बहुत प्रश्न पूछते थे, है ना? इस विषय की सूक्ष्मता एवं गहनता समझने वाले हम 8-10 स्वाध्यायी इस पर चर्चा कर सकते थे। देखो, ये आपके ही साथ इसकी चर्चा हो सकती थी, बाकी कहीं पर भी हिंदुस्तान में बहुत हमने इसके बारे में जिसको कहेंगे कि खोजने की, ढूंढने की कोशिश की कि कोई इसके बहुत अधिक स्वाध्यायी हो तो इनको फिर हम उनको दिखा के भी इसमें से कुछ और चर्चा करें उनके साथ। परंतु महाबंध पढ़ने वाले बहुत विरले हैं, तो उसकी जो ये त्रुटित अंश निकाले हैं उस पर कौन चर्चा करे। तो हमारे स्वाध्याय हमारे जो उनके साथ ये चर्चा हो सकती थी, है ना? इस पद्धति से छठवीं, सातवीं, फिर तीसरी और फिर पहली पुस्तकों के त्रुटित अंश ढूंढते हुए हमारा महाबंध का स्वाध्याय संपन्न हुआ। अब इसको सुचारू रूप से क्रम से लिखने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमने छठे से शुरुआत की और फिर कितने विषय उल्टे 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 करते लिखे गए। इनका DTP टाइप सेटिंग का महत्वपूर्ण कार्य हमेशा की तरह जिनवानी के लिए समर्पित मुमुक्षु श्री विनोद भाई सावला ने अत्यंत मेहनत से किया। उसकी 2-2 बार प्रूफ रीडिंग भी हुई। इस दौरान मैंने अनेक विद्वानों त्यागियों के यहाँ पूछताछ की ताकि इसे कोई ठीक तरह से जांचे, इसमें कोई त्रुटियां हो सके उसे ठीक करावे। परंतु कहीं कहीं इन ग्रंथों का केवल वाचन हुआ है, हमारे यहाँ जैसे विस्तार सहित चर्चा करके वहाँ ऐसा क्यों लिखा है, इसके कारण मीमांसा होती है, वैसा कोई हमें नहीं मिला। मैंने ही मूल ग्रंथों का इन त्रुटित अंशों सहित दोबारा अध्ययन किया, क्योंकि देखो जब तक हमारे महाधवला का अध्ययन पूरा हुआ हमने दूसरी बार धवला शुरू किया और उसके बाद ये DTP होने में भी काफी समय लगा, और तब तक वो तो इसका तो जब विषय चलता है तो वो तो ताजा होता है ना, उस संबंधी अपने विचार भी क्लियर होते हैं, और फिर दोबारा जब इसको जांचने लगी तो पहली बातें पूरा मूल ग्रंथों को निकाल कर पहले दोबारा अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि अब विषय पढ़कर 10-12 महीने बीत चुके थे। कहीं कहीं मुझे ही कुछ सुधार सुझाव आवश्यक लगे। विनोद भाई सावला ने भी उन्हें यथास्थान दुरुस्त किया। इतनी कोशिश के बाद भी मेरी अल्प बुद्धि असावधानी के कारण कुछ त्रुटियां रह गई हो और विशेष ज्ञानी अभ्यासी के ख्याल में आए तो अवश्य बता देना। अब दोबारा इसका अवलोकन करती हूँ तो आश्चर्य लगता है कि यह जटिल अविश्वसनीय कार्य कैसे संपन्न हुआ। तब अमृतचंद्राचार्य के शब्द कानों में गूंजते हैं कि अरे, यह तो शब्दों की रचना, अक्षर और पदों की रचना उनकी स्वयं की योग्यता से हुई है, तू मोह में मत नाच। ये हमने जो कुछ प्रयास किया था उस समय तो उसको अभी ये अच्छी तरह हमारे सामने है। इसमें भी हो सकता है कि इस बार अभ्यास करते समय अभी हमारे सामने है तो इसमें भी कुछ हो सकता है, हम और भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ त्रुटि हो तो निकाल सकते हैं। ये जो आने वाले जो अंश है उसकी भी एक विशेष सूची बनाकर यहाँ जोड़ दी है। अभी हम एक नंबर के पृष्ठ तक आए। देखो महामंद पुस्तक एक पृष्ठ 25 त्रुटित अंश के बाद, यानी वो तो अवधि ज्ञानावरण के अधूरे निरूपण से यह प्रारंभ होता है। इस प्रकरण का नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन निरूपणा। उसमें ये अवधि ज्ञानावरण उसके पहले वाला सब त्रुटित अंश निकल गया है। यहाँ पाठकों के सुविधा के लिए संपादक महोदय जी ने, यानी जो सुमेरु चंद्र दिवाकर जी है, उन्होंने ज्ञानावरण की शेष प्रकृतियों का भी यहाँ वर्णन किया है। एक नंबर के पेज पर अभी दो तीन लाइन मैंने पढ़ा। अब धवला पुस्तक 6 में, धवला की बात है, भूत बलि आचार्य कृत ही पहली चूलिका भी। देखो छठी नंबर के आपको याद होगा पुस्तक में चूलिका है। चूलिका यानी जो 5 पुस्तकों पर जितना विषय आ चुका है उसमें कुछ आया भी है कुछ नहीं भी आया है, उसको अच्छी तरह से फिर दोबारा पाठकों की सुविधा के लिए अन्य तरीके से उसको प्रस्तुत किया है, उसको चूलिका जो कहते हैं। तो वो पहली जो चूलिका है वो प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका है, वह पूर्ण ही यहाँ पठनीय है। वहाँ प्रथम 8 मूल प्रकृतियों के नाम व स्वरूप का वर्णन किया है और ये बात धवला पुस्तक 6 पृष्ठ 5 से 44 और सूत्र 3 से 12 तक है। ये पूरा पढ़ लेते इतने फिर हम जाएंगे धवला पुस्तक 6 में। पश्चात उत्तर प्रकृतियों का कथन करने के लिए लिखते। देखो ये मैंने वहां से यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट वो पुस्तक निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं पश्चात उत्तर प्रकृतियों का कथन करने के लिए लिखते हैं, मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ संग्रह नय का अवलंबन ले। संग्रह नय ने इन शॉर्ट पूरा इकट्ठा संग्रह करके, और व्यवहार नय ने उसके भेद प्रभेद करना। संग्रह नय का अवलंबन ले मेधावी यानी बुद्धिमान, उनके लिए तो शॉर्ट में बताए तो वो पकड़ लेते हैं। प्रकृति समुत्कीर्तन करके अब मंद बुद्धि जनों का अनुग्रह करने के लिए, यानी जो मूल प्रकृतियों में मेधावी है वो तो समझ जाते उसके भेद प्रभेदों को, परंतु हमारे जैसे जीवों के लिए ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, उसका विस्तार से वर्णन होगा। उसके लिए व्यवहार नय रूप पर्याय से परिणत आचार्य आचार्यों को ही व्यवहार नय रूप पर्याय से परिणत कहा क्योंकि वो उस समय वो कथन कर रहे हैं भेदों का, इसलिए वो आचार्य को ही व्यवहार नय पर्याय रूप से परिणत आचार्य कहा। वे उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी वहां उन्होंने उत्तर प्रकृतियों का कथन किया है। और वो आगे 13 सूत्र से सूत्र 46 तक, ऊपर हमने देखा था सूत्र 3 से 12 तक, और यहाँ उसी के नेक्स्ट 13 से 46 तक अर्थात धवला पुस्तक 6 के पृष्ठ 14 से पृष्ठ 78 तक। ये 14 कैसे है, ऊपर 44 लिखा था, 44 होना चाहिए थे शायद, हम देखेंगे अभी, या ऊपर 14 होना चाहिए था, जरा निकालना धवला छठी पुस्तक। नहीं वो 14 होना चाहिए, ऊपर 44 नहीं ऊपर 14 होना चाहिए, मैंने बोला ना ये, इसीलिए ये 44 लिखा है ना ऊपर 5 से 44, तो पृष्ठ 5 से 14 है और नीचे पृष्ठ 14 से पृष्ठ 78 तक, ये बराबर है। सभी उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपना की हुई है जो वहां से मूल में पठनीय है, इसलिए जो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार के अंतर्गत अभी हमारा जो विषय चलेगा महाबंध में उसके लिए हम सूत्र सूत्र पढ़ेंगे क्योंकि पूरी हमने विस्तार से टीका तो पढ़ी है, हमको तो उसके मूल मूल सूत्र देखेंगे। तो हम निकालेंगे धवला की छठी पुस्तक और उसमें 3 नंबर का सूत्र है 5 नंबर के पृष्ठ पर, इसका नाम ही, इस चूली का नाम ही प्रकृति समुत्कीर्तना है, जो महाधवला का ये प्रकृति बंध अधिकार में सबसे पहला अनुयोग द्वार है प्रकृति समुत्कीर्तन। समुत्कीर्तन कहते वो है, बस इतना बताना उसका होता है। किसी भी अनुयोग में सबसे पहला होता है ना समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना करता है वो है ये बताना, उसके नाम बताते हैं यहाँ पर। देखो तीन नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे, अब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करेंगे। देखो एक यहाँ से शंका समाधान पढ़ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। पांच नंबर का पेज नीचे से सातवीं लाइन, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन को ही किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें 24 अनुयोग द्वार है ना, इसको पहले क्यों कहेंगे। समाधान, क्योंकि प्रकृतियों के अज्ञात होने पर यानी प्रकृतियों के नाम ही नहीं मालूम है, स्थान समुत्कीर्तन आदि के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। स्थान कम यानी प्रकृतियों के स्थान यानी कितने किसके कितने होते हैं, बंधने के या उदय के वगैरह वगैरह, यहाँ बंध की बात है ना, एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां बनती है। जैसे ज्ञानावरण का पांच प्रकृतियों का एक स्थान है, दर्शनावरण का नौ का एक है, छह का एक है, चार का एक है, तो उसके नाम नहीं मालूम तो आप कैसे कहेंगे। ये कह रहे कि यहाँ अगर प्रकृतियों के नाम ही नहीं बताएंगे तो आगे वो स्थान समुत्कीर्तना वगैरह ने आगे बहुत सारे विषय आने वाले हैं, उसके ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है, अवयवी के अज्ञात रहने पर अवयव नहीं जाने जा सकते, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता, इसलिए प्रकृति समुत्कीर्तन को ही पहले कहते हैं। अब ये जो प्रकृति समुत्कीर्तन है वो मूल प्रकृति समुत्कीर्तन यानी मूल प्रकृतियों का कथन और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन के भेद से दो प्रकार का है। मूल प्रकृति किसको कहेंगे, जिसमें सारे भेद गर्भित है यानी भेद किए बिना उसको कहना, उसको कहेंगे मूल प्रकृति, और पृथक पृथक भेदों का कहना उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। अब आना पृष्ठ संख्या 6 पर, धवला की पुस्तक चल रही छठी के छठा नंबर का पृष्ठ है। अब ये 4 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे हम, वह प्रकृति समुत्कीर्तन किस प्रकार है। हाँ तो उसके उत्तर में बताते हैं 5 नंबर का सूत्र, ज्ञानावरणीय कर्म है वह है ये बताना ही समुत्कीर्तन है, यानी ज्ञान को जो आवरण करता है वो ज्ञानावरण कर्म है। यही भी जरा जो इस पेज पर दो तीन जो शंका समाधान है उसको पढ़ने लायक है, हम उसको पढ़ते हैं। 5 नंबर के सूत्र के नीचे देखो, ज्ञान अवबोध अवगम परिच्छेद सब एकार्थवाचक नाम है, सब ज्ञान के ही वो तो पर्यायवाची नाम है। उस ज्ञान को जो आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। शंकाकार पूछते हैं, ज्ञानावरण नाम के स्थान पर ज्ञान विनाशक ऐसा नाम क्यों नहीं कहा। प्रश्न समझ में आए, ज्ञान विनाशक कहना था आवरण क्यों कहा, उसका समाधान नीचे देखो। क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन का विनाश नहीं होता, ये जीव का लक्षण है। यदि ज्ञान और दर्शन का विनाश हो जाए तो जीव का भी विनाश हो जाएगा, यानी ज्ञान का ये उघाड़ ही ना दिख होता है, ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होगा, वो तो स्वभाव है, उसका लक्षण है। अगर लक्षण का ही नाश हो जाए तो द्रव्य का नाश मानना पड़ेगा, क्योंकि लक्षण से रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता, और ज्ञान ये जीव का लक्षण है। अभी वो उसमें निरावरण ज्ञान की अक्षर के अनंत विभाग की उसकी बात हुई है, अब आगे बढ़ते हम। हाँ पेज नंबर 9, दर्शनावरणीय कर्म है, उसमें हमेशा उन्होंने बताया है कि आत्म विषय के उपयोग को दर्शन कहते हैं और बाह्य और अंतरंग विषय को करने वाले ज्ञान और दर्शन उसमें एकता नहीं हो सकती, इस तरह से। अब उसकी चर्चा बहुत है, वो हम छोड़ देते हैं। पेज नंबर 10 पर आते हैं, 7 नंबर का सूत्र, तीसरे नंबर पर वेदनीय को लेते हैं। वेदनीय कर्म है यानी जो अनुभवन किया जाता है या जो वेदन कराता है उसको वेदनीय कहा। यानी जीव के सुख दुख में जो निमित्त है, इसलिए उसको वेदनीय कहा। देखो पेज नंबर 11 पर जरा पहले दो तीन लाइन पढ़ना है हमको। शंकाकार पूछता है, उस वेदनीय कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, वो है ये कैसे सिद्ध होता है, ये पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि सुख और दुख रूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते, इस अन्यथा अनुपपत्ति से वेदनीय कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। अन्यथा अनुपपत्ति, उसकी उत्पत्ति उसके बिना नहीं होती, ये मेरी भाषा में नॉट अदरवाइज पॉसिबल है। और कारण से निरपेक्ष कार्य उत्पन्न होता नहीं, क्या कहना चाहते, जहाँ कार्य है वहाँ कारण होता ही होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और यहाँ तो निमित्त होता ही है, यहाँ निमित्त कारण की बात है, वो सुख दुख तो जीव का परिणाम जीव के अपने कारण से हो रहा है, परंतु यहाँ कारण से निरपेक्ष बिना निमित्त के भी नहीं, उसके निरपेक्ष नहीं होगा, वो तो वो उसको जीव को सुखी दुखी नहीं कर रहा है, परंतु वो वहां पाया जाता है, बस उसकी उपस्थिति है, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता। और ये कर्णान योग के ग्रंथों में निमित्त को ही मुख्य करके उसी को उसी की चर्चा की जाती है। जीव दुख स्वभावी नहीं है, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन के विरोधी दुख का जीव का स्वभाव होने में विरोध आता है। समझ में आती है ना बात, जैसे ज्ञान स्वरूपी है दर्शन स्वरूपी है, तो ज्ञान और दर्शन तो सुखमय है, और ये जो दुख हो रहा है वो स्वभाव नहीं है। ज्ञान और दर्शन स्वभाव के अंश थे, वो लक्षण थे, और ये दुख लक्षण नहीं है, उसका जीव का स्वभाव नहीं है। अब आगे, मोहनीय कर्म है, जो मोहित किया जाता है वो मोहनीय कर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी वहां चर्चा की है, पर उसको छोड़ देते हैं अभी हम। आयु कर्म है, यानी वो तो भव धारण करने की शक्ति हो जाती है उसके। ये नीचे एक प्रश्न पूछा है लास्ट लाइन में, उस आयु कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, उसका उत्तर दिया है 13 नंबर के पृष्ठ पर। देह की स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती, यानी उसमें वो निमित्त है। देह की स्थितियां नहीं, देखो आपको शायद याद होगा जीव कांड में हमने पढ़ा था, जो आहार वर्गना देह के लिए जीव ग्रहण करता है, भले वो देवनार की वैकृत शरीर रूप परिणत होते हैं, मनुष्य तिरियंचों के औदारिक शरीर रूप परिणत होते हैं, परंतु जो एक एक समय में जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का देह के लिए ग्रहण होता है, जिसको महार वर्गना कहते हैं, उसकी भी स्थिति, देह की स्थिति कितनी पड़ती है, तो उस समय से लेकर जितनी आयु बाकी उतनी ही देह की स्थिति, निषेक रचना होती है, जैसे कर्मों में निषेक रचना होती है, तो हर समय जो ग्रहण होता है पुद्गल का पिंड देह के लिए, उसकी भी निषेक रचना होती है। जैसे 100 साल की आयु लेके आया है कोई है, और उसके अभी गर्भधारण का समय है, तो उस समय जो परमाणु ग्रहण किए उसकी निषेक रचना हुई, अंतिम निषेक कहाँ है, तो 100 साल की जितने समय वहां पड़ा है। अब वो 10 साल का बच्चा हुआ, उस समय जो पुद्गल पिंड ग्रहण होगा उसका, उसकी स्थिति 90 साल की होगी। अब वो 89 साल का हो गया, तो 89 कहा, 100 साल कहा, तो 11 साल की उसके। हाँ, और अभी 1 साल बाकी उसको मरण को, 99 1 साल के लिए, मरण के समय जो ग्रहण करेगा वो उदय रूप होकर ही छोड़ेगा, है ना, जीव ही छोड़कर चला जाएगा। तो ये शरीर की स्थिति आयु कर्म के अनुसार बनती है, ये कहना चाहते हैं। यानी हम कहेंगे तो आयु कर्म तो हमने देखा नहीं, हम तो ये तो बचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अरे ना, कर्म उसके आगे है, आयु कर्म भी उतना ही उतना है, और शरीर के परमाणुओं की स्थिति भी, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट पर्याय होने वाली है वो परमाणु में सुनिश्चित है, वो आपकी देह नहीं कहलाएगा, आप ही उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो कहते देह की स्थिति अन्यथा नहीं हो सकती। अब आगे, आयु के बाद नाम कर्म है, और उसका भी अस्तित्व कैसे जानेंगे, तो शरीर के जो विशिष्ट आकार वर्ण वगैरह इतने जो कार्य अदरवाइज हो नहीं सकते, गोत्र कर्म नीच और उच्च में उत्पन्न करने वाला है कुल में, वो गोत्र कर्म है। और अंतराय कर्म जो दान लाभ आदि में जो विघ्न करने में समर्थ है वो अंतराय कर्म है। इस तरह से ये मूल प्रकृतियां आठ है, उसके हमने नाम देखे। देखो इसमें एक नीचे से ये तो चार लाइन का पांच लाइन का पैराग्राफ है ना, वहां पढ़ेंगे। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय के समागम से उत्पन्न हुई, 14 पेज, इन आठ प्रकृतियों के द्वारा एक एक जीव प्रदेश पर संबद्ध। एक एक जीव प्रदेश यानी कौन से जीव प्रदेश छोड़े, बीच के आठ छोड़े, प्रत्येक जीव के प्रदेश पर संबद्ध ने बंधे हुए, उसके साथ कांटेक्ट में आए हुए अनंत परमाणुओं के द्वारा अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त। ये अनादि स्वरूप से यानी वो प्रवाह रूप से अनादि से जीव के साथ बंधे हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जीव छुटा था और बाद में आकर बंधे हुए। अमूर्त भी यह जीव मूर्तत्व को प्राप्त होता हुआ, क्या कहना चाहते हैं, कर्म है वो पुद्गल है, पुद्गल होने से उसको मूर्तिक कहेंगे, और जीव और कर्म का संबंध अनादि से ही है, कभी कर्म रहित जीव था ही नहीं, तो कर्म मूर्तिक होने से जीव को भी मूर्तिक कह देते हैं। यानी कि जीव मूर्तत्व को प्राप्त होता हुआ, आपको याद होगा जीव कांड में हमने सम्यक तो मार्गणा में देखा था जीव के भी दो भेद, कौन से, मूर्त और अमूर्त। अरे जीव भी अमूर्त होते हैं, हाँ, जब तक अनादि से कर्म के साथ संबंध है, तो कब तक वो मूर्त रहेगा, 14वें गुणस्थान के अंत समय तक, और जब सिद्ध दशा होगी वो अमूर्त हो जाएगा। तो प्राप्त होता हुआ आविद्ध कुलाल चक्र के समान, अर्थात प्रयोग प्रेरित कुंभकार के चक्र के तुल्य, क्या कहना चाहते हैं, द्रव्य परिवर्तन आदि सात प्रकार के संसारों में संसरण यानी भ्रमण करता है, यानी प्रत्येक जीव प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, और उसको जीव को भी मूर्ति कहेंगे, और वो कैसा भ्रमण करता है, उसके लिए कुम्हार के चाक की उपमा दी, कुम्हार में उसको घुमाया और वो चल रहा है, तो उसके प्रयोग प्रेरित कहा, कुंभकार के प्रयोग से प्रेरित होकर उसके निमित्त से वो चाक घूम रहा है, वैसे यहाँ कर्म के निमित्त से है, तो जीव के अपने भाव कर्म के निमित्त से प्रेरित होकर कहेंगे, उसके निमित्त रूप लेना है प्रेरित कहने से। द्रव्य परिवर्तन आदि सात संसार, हमने तो पांच सुने थे, आप बताएंगे सात कौन से, हमने बहुत बार देखा है इसको, हाँ बोलो बोलो, सात प्रकार के परावर्तन कौन से, देखो देखो द्रव्य परावर्तन बराबर, क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर भाव परावर्तन, भाव और फिर भाव। अभी जो द्रव्य परावर्तन है वो नौ कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन रूप से दो है, और क्षेत्र भी स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन ने अवगाहना के सभी भेदों को क्रम से प्राप्त किया, उसको लेना है। यानी द्रव्य परावर्तन दो, कर्म और नो कर्म, कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य, यानी शरीरों के ग्रहण किए हुए परमाणुओं की बात है, और क्षेत्र में स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। स्वक्षेत्र में यानी उसके अवगाहना के भेदों की बात है, मिनिमम से मैक्सिमम अवधारणा तक जब प्रत्येक उसके क्रम से उसने फिनिश कर दिए तब उसको ले लेना, और परक्षेत्र में क्या लेना, पहले में पहले लोक के सेंटर में उत्पन्न हुआ मेरु तल पर, जो लोक का सेंटर है, तो लोक के जो आठ मध्य प्रदेश है वहां अपने जीव के अपने आठ प्रदेश को कोइंसाइड करते हुए वहां जन्म लिया मिनिमम अवगाहना के साथ। अब वहां कितनी मिनिमम अवगाहना है, तो जो निगोद की जो असंख्यात प्रदेश है, जो उसने जितने प्रदेश रोके हैं घनांगुल का असंख्यात भाग, उतनी बार वहीं पर उसको जन्म लेना चाहिए। वो कहते अन्यत्र, अरे दो चार प्रदेश इधर उधर जाएगा वो नहीं चलेगा, तो उतनी असंख्यात बार वहीं पर जन्म लेना चाहिए, तो उसी में अनंत काल बीत जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट भव तो उसका थोड़े बाजू में जाएगा, कहीं लोकाकाश दूसरे कोने में चला जाएगा, उसी क्षेत्र पर आने के लिए हो सकता है अनंत काल बीत जाए, पर उसके जब उतने ही बार वहां उसके सभी प्रदेशों, एक एक प्रदेश को एक एक बार गिनना, फिर उसके एडजस्टमेंट एक प्रदेश एडजस्ट करते करते लोग क्रम से पूरे ही प्रदेश ऑक्यूपाई होने चाहिए जन्म क्षेत्र करके, तो पूरा लोक का होकर फिर वहां जाके जन्म लेता है, तब जाके एक पर क्षेत्र परावर्तन होता है। तो ऐसे सात प्रकार के, अभी हम उसकी चर्चा में नहीं जाते क्योंकि ये पांच परावर्तन क्या होते हैं हमने 34 घंटों में लिया था, देवलाली में अपना शिविर हुआ था ना, अभी वो हो गया ना, वो अपलोड हुआ है, वो यूट्यूब पर है वो सारा, जैन तत्व नाम से। आप नहीं आए थे शिविर में, परावर्तन कर रहे थे। अब यहाँ लिखा है ना, मेधावी शिष्यों के अनुग्रहार्थ, ये जो मैंने अभी वाक्य पढ़ा था, संग्रहणय का अवलंबन लेकर प्रकृति समुत्कीर्तन करके, यानी इन शॉर्ट उन्होंने मूल प्रकृति बता दिए है, तो बुद्धिमान है तो उसके भेद जान लेते हैं। अब मंद बुद्धि जनों का अनुग्रह करने के लिए, यानी हमारा उपकार करने के लिए, व्यवहार निरूप पर्याय से परिणत आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी आचार्यों का अभिप्राय भी भेद करके समझाना है। तो सूत्र को पढ़ेंगे हम। ज्ञानावरणीय कर्म की पांच उत्तर प्रकृतियां हैं। अब वे कौन सी है, वो पेज नंबर 15 पर पहले सूत्र में 14 नंबर के सूत्र में लिखा है। वे पांच प्रकृतियां इस प्रकार है, आभिनिबोधि ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनपर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। अभी ये नीचे उसकी जो चर्चा थी, अभिमुख नियमित वगैरह, वो अभी हमने पढ़ी थी, यहां से ही वो सारा उद्धृत किया है। किसमें अभी हमने पढ़ा ना, महाबंध में, अभी जो हमने अभिनिबोधिक ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण की चर्चा पढ़ी थी वो वहीं से पढ़ी थी। अभी हम सूत्र सूत्र पढ़ेंगे आगे के, यानी वो सब अवग्रह यहाँ वाय धारणा के संबंध में यहाँ जो कोई चर्चा है वो सब हमने पढ़ी थी, इतने विधान विस्तार से नहीं, फिर भी शॉर्ट में उन्होंने बता ही दिया था। अब हम आगे आते हैं क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा है। पेज नंबर अभी 31 पर आना। देखो यहाँ कहते हैं, दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। अभी 9 कहने से उसके नाम बताने हैं, तो वो नीचे के सूत्र में बताए 16 नंबर के, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, निद्रा और प्रचला, तथा ये तो 5 तो निद्राएं हो गई, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, ये 9 दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। अभी उसके भेद जो है उसका वर्णन इसमें बताया है, निद्रा निद्रा में वो तो गाढ़ निद्रा में सोता है वगैरह वगैरह, उसकी बात हमने बहुत बार पढ़ी थी। अब आते हैं पेज नंबर 34 पर, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां, 17 नंबर का सूत्र, और 35 पर 18 में बताया है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ये 2 ही वेदनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इसके सुख दुख का वगैरह उसकी चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 37 पर, सूत्र सूत्र को पढ़ेंगे, कहीं विशेष चर्चा होगी तो उसको मैं बताऊंगी आपको। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। हाँ, ऊपर 19 लिखा है और नीचे 11 लिखा है। हाँ, वो लास्ट टाइम गौर नहीं हुआ था, उसको 19 करना। चूंकि दो बार पढ़ चुके हैं अभी ये ऊपर 20 नंबर का सूत्र। उपर्युक्त मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है। उसके लिए आगे भी बढ़ते देखो, 38 नंबर के पृष्ठ पर। ये बोल्ड बोल्ड सूत्र को पढ़ते जाएंगे हम। जो दर्शन मोहनीय कर्म है वह बंध की, देखो अभी इसमें अपेक्षा डाली, बंध की अपेक्षा एक प्रकार का है, यानी मिथ्यात्व का ही बंध होता है, किंतु उसका सत्कर्म तीन प्रकार का है, उसका सत्व तीन प्रकार का है, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। यानी मिथ्यात्व प्रकृति में से ही पहली बार सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और दो प्रकृतियां तैयार होती है, तो तैयार होने के बाद उसकी सत्ता बनी रहती है जब तक वो नष्ट नहीं होती। ये हो गया दर्शन मुनि के भेद। अब पेज नंबर 40 पर आना। जो चारित्र मुनि कर्म है वह दो प्रकार का है, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। देखो इसको कषाय वेदनीय ऐसा नाम है उसमें, वेदनीय शब्द इसमें भी आ जाता है। अब कषाय वेदनीय नीचे लिखा है 16 प्रकार का है, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोग, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधमान मायालोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोग और क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन, लोभ संज्वलन। अब इसको एक एक संज्वलन का नाम अलग लिया, क्योंकि वो एक साथ नहीं जाते हैं, क्रम से जाते हैं, नाश होते, इसलिए उसको अलग अलग बताया। अब आगे बढ़ते हैं, नौ नौकशायन की बात हमको पढ़नी है ना। पेज नंबर 45 पर 24 नंबर का सूत्र है, जो नौकषाय वेदनीय कर्म है वह नौ प्रकार का है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। ये मोहनीय के भेद हो गए। अब 48 नंबर का पेज निकालना। आयु कर्म की चार प्रकृतियां हैं, ये तो हमें मालूम ही है, कौन सी है, नरकायु, तिर्यकायु, मनुष्यायु और देवायु। अब नाम कर्म की कल देखेंगे, क्योंकि वो तो 42 है ना, क्योंकि बाकी जो बची है गोत्र की तो दो होगी, अंतराय की 5 होगी, परंतु ये उसके हम कल ही बात करेंगे इसके। पेज नंबर 49 पर हम आ गए हैं और वहां से हम पढ़ेंगे कल। कल हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा ना, छठी पुस्तक में से कल आगे पढ़ेंगे हम, जहां हम रुके ना यहीं पर से वहां चले जाएंगे हम। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, वाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई,